Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
आदाब, गुड इवनिंग. हम हाजिर हैं मेंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कहानी बुनो. और आज है कहानी बुनो का 9वां एपिसोड. मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी और स्पीकर हिमांशु जी. आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनाते हैं, सुनते हैं बेहतरीन कहानियां और बात करते हैं कहानियों की बुनाई के बारे में, कि कैसे कहानियां लिखें और कैसे सुनाएं. दोस्तों, गर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं और मौसम का मिजाज भी हमें शिद्दत से जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर रहा है. हम कंक्रीट के जंगल यानी शहर में रहते हैं, जहां मकानों के बदन दिन भर धूप में तपते सोखते और फिर पूरी रात अपनी गर्मी फेंकते रहते हैं. मगर कुदरत जहां तपिश के थपेड़ों से दो चार करती है ना, वहीं हमारे लिए राहत का सामान भी करती है. और फलों से बेहतर कोई राहत पोष तो हो ही नहीं सकता. फिलहाल तो मुझे और कुछ नजर नहीं आता. उस पर भी अगर राहत पोष फल अगर मीठे रसीले आम हो तो फिर क्या ही कहने. तन मन से लेकर जुबान तक उसकी मिठास बिखर जाती है. बाजार आम की खुशबू से इस वक्त रौनक अफरोज हो चुके हैं और हर तरफ आम की खुशबू फैली हुई है. शायद इसी मंजर को देखकर मुनव्वर राना ने लिखा होगा कि इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते. दोस्तों, भारत आमों का देश है और आम फलों का राजा है. जाहिर है किस्साए आम तो मंजरे आम होंगे ही. आम का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मिर्जा गालिब की बायोग्राफी लिखने वाले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली से मिलता है. हाली अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार गालिब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और उनके कुछ साथियों के साथ बागे हयात में टहल रहे थे. बार बार वो देख रहे थे वहां के आम के पेड़ों को, जो सिर्फ बादशाह, शहजादों और हरम की औरतों के लिए थे. मतलब उसके आम वही लोग खा सकते थे. चलते चलते गालिब आम के पेड़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे. बादशाह ने पूछा, हर आम को आप इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं मिर्जा? गालिब ने कहा, मेरे रहनुमा, एक बार किसी शायर ने कहा था कि हर आम पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है. मैं अपने दादा, पिता और अपना नाम तलाश रहा हूं. बादशाह मुस्कुराए और उन्होंने शाम तक मिर्जा गालिब के घर एक टोकरी भर आम भिजवा दिए. एक बार वो अपने बेहद करीबी दोस्त हकीम रजीउद्दीन खान के साथ अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे. उनके इस दोस्त को आम बिल्कुल पसंद नहीं थे. और मैं तो ताज्जुब करता हूं कि आम भला किसको पसंद नहीं होंगे, मगर उनको पसंद नहीं थे तो नहीं थे. तभी वहां से एक गधा गाड़ी गुजरी. गधे ने रास्ते में पड़े आम के छिलके को सूंघा और अपना मुंह घुमा लिया. हकीम साहब गालिब की तरफ मुड़े और कहा, देखो यहां तक कि गधा भी आम नहीं खाता. गालिब ने फौरन जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं हकीम साहब कि गधे आम नहीं खाते. आम की मिठास मेरे कमरे में भी बिखरने लगी है और सागर खयामी का एक नज्म मुझे याद आ रहा है. दीपिका जी, अगर इजाजत दें तो मैं सुनाऊं.
बिल्कुल बिल्कुल फरमाएं.
जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस. आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले आते हैं खाने को बनारस. होठों में हसीनों के जो अमरस का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है. आमद से दशहरी के है मंडी में दशहरा, हर आम नजर आता है माशूक का चेहरा. एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा, कह डाला कसीदे के एवज में आम का सहरा. खालिक को है मकसूद के मखलूक मजा लें, वो चीज बना दी है कि बूढ़े भी चबा लें. फल को जमाने में नहीं आम से बेहतर, फल कोई जमाने में नहीं आम से बेहतर. कहता सना आम का गालिब सा सुखनवर, इकबाल का शेर कसीदे के बराबर. छिलकों पे भिनक लेते हैं सागर से फटीचर. सागर खयामी कह रहे हैं अपने आप को कि छिलकों पे भिनक लेते हैं सागर से फटीचर. होठों में हसीनों के जो अमरस का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है.
वाह वाह.
आखिरी बंदे की, क्या बात की आमों की, हों देसी की विदेशी. सुर्खे हों सरवली हों कि तुखमे हों कि कलमी, चूसे हों सफेदे हों कि गजरी हों कि फजरी. एक तुरफा कयामत है मगर आम दशहरी, जन्नत में गर गंदुम के एवज आम जो खाते, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते.
बहुत खूब. आज तो आम भी इतरा रहा होगा.
आज तो आम भी इतरा रहा होगा. बहुत खुश होगा कि हमारे ऊपर नज़में पढ़ी जा रही हैं. और दोस्तों, आज का टॉपिक, आज की कहानी आम पर ही है, किस्सा आम. तो मैं दीपिका जी को हैंड ओवर करता हूँ कि वो आगे बोले.
बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी. जैसा कि हमारे पास बहुत सी कहानियां अक्सर आया करती हैं हमेशा इस जो हम टॉपिक देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो पाती है। जैसे इस बार हमारे पास जो आम से संबंधित जो हमने टॉपिक दिया था किस्सा आम, तो उसमें किस्से तो कम थे, कम क्या शायद ना के बराबर थे, बट आम के फायदे और नुकसान जरूर गिना दिए गए थे। तो वो तो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं और वो एक निबंध अनुच्छेद ऐसा हो जाता है। तो इस तरह मैंने फिर, जैसा कि हमारे पास हैं वसीम जी हमारे राइटर, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप कुछ लिखिए इसमें और जिसमें कुछ किस्सा हो। तो वसीम जी ने बहुत ही खूबसूरत, आज कुछ थोड़ी सी हट के कहानी लिखी है, तो उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आएगी।
अब तो, इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से सुना
ओहो, अपनी कहानी का ही इंतजार नहीं हो रहा। समझ में आ रही है, मैं पूछूंगी बाद में कि क्यों लिखी है आपने ये। तो पेश है वसीम जी की लिखी हुई कहानी किस्साए आम। अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने की आखिरी तारीख, आखिरी सप्ताह था। एक तरफ जेठ की दोपहरी जिस्म जलाने के लिए अप्रैल भर अपनी बुनियाद डालती रहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम भी अंगड़ाइयां लेकर चारों तरफ आम की खटास और मिठास बिखेर रहा था। बौर की मादकता अब टिकोरों से होकर रसीले आम में तब्दील हुई जाती थी और इधर लगन के पर्चे भी छपने लगे थे। बहरहाल वो वक्त भी आ गया और असलम मियाँ की बारात चली, और अगले दिन दोपहर होते होते असलम मियाँ निकाह कबूल करके अपनी शरीके हयात ला चुके थे। सुहागरात की सेज सज चुकी थी और असलम मियाँ मुंतजिर थे कि कब रात का वजूद बिखरे तो उनकी मोहब्बत अपने वजूद पर पहुंचे। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने ही निकाह की तस्वीरें देखते हुए असलम मियां ना जाने किस जवां ख्याल में थे कि तभी दरवाजा खुला और उनके दिल की धड़कनें रेलगाड़ी के इंजन की तरह थकथकाने लगी। एक प्लेट में आम की फांकों को सलीके से सजाए हुए बेगम आ खड़ी हुई और आहिस्ते से कहा, अस्सलाम अलैकुम। असलम मियां की धड़कनों पर जैसे आम रस की फुहार बरस पड़ी। आम से भरी प्लेट की तरफ देखते हुए जवाब में बड़े धीमे से उनके होंठ हिले, वालेकुम अस्सलाम। बेगम अभी कुछ और कहती कि उससे पहले ही असलम ने पूछा, सुहागरात में तो दूध का गिलास लेकर आते हैं ना, फिर ये आम से भरी प्लेट। असलम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई कि बेगम ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, ताकत तो दोनों ही देते हैं। इतना सुनना था कि असलम मुस्कुरा उठा और उसके दिल की धड़कनों में आम की मिठास घुलने लगी। मुस्कुराते हुए असलम ने कहा, जी सही कहा आपने, तीसरी क्लास में पढ़ा था मैंने कि आम खाकर दूध पीने से ताकत मिलती है। फोन के टेबल पर प्लेट रखते हुए बेगम बोली, तो फिर दूध भी लाऊं? असलम ने कहा, नहीं नहीं, आम से बड़ा शगुन तो कुछ है ही नहीं। बेगम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हमारी मोहब्बत की वजह भी तो आम ही है ना। असलम कुछ नहीं बोला, बेगम का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और घूंघट उठाने लगा। चेहरा क्या था, जैसे दूध में घुला हुआ पीला आम हो। बेगम का शर्माना था कि कमरे में एक नूरानी मंजर ठहर गया और असलम उनके चेहरे को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खो गया, जब पहली बार वो रिहाना से मिला था। कुछ साल पहले जब असलम कॉलेज में था तब वह बहुत शरारत किया करता था। आम उसे पसंद थे लेकिन वो खरीद कर खाने का शौकीन नहीं था, वह तो बाग बागीचों में चोरी छुपे घुसकर आम चुराने का माहिर था। लेकिन कोई कितना भी माहिर क्यों ना हो, एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। रेहाना का आम का बागीचा था। अक्सर शाम को वो अपने बागीचे में अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती थी। एक दिन उस बागीचे में वह अकेले घूम रही थी क्योंकि उसकी सहेलियां नहीं आ पाईं। इत्तफाक से उसी दिन असलम एक कोने में होकर चुपके से बागीचे में पहुंच गया। इत्तफाक ने अच्छे खासे रिश्तों की बुनियाद डाली है। रेहाना को कोई आहट हुई तो वो एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी। फिर क्या, जैसे ही असलम मियां ने आमों से लदे एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, वैसे ही रेहाना ने जाकर उसे पकड़ लिया। असलम घबराकर गिरा तो उसकी आंखें बंद हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। उसे लगा अब तो बस वो पकड़ा ही गया। उसने धीरे से आंखें खोली तो उसके ऊपर गिरी रेहाना उसे बड़ी ही मोहब्बत से देख रही थी। कौन हो तुम? असलम ने हकलाते हुए पूछा। रेहाना, रेहाना ने जवाब दिया। कौन रेहाना? असलम ने इतना कहा और रेहाना के कंधे पकड़कर उसे खुद से अलग कर दिया। रेहाना को अब याद है कि वो किस हालत में थी। उसको याद नहीं। बेचारी शर्माकर तेजी से भागी ये कहते हुए कि अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, इसकी सजा मिलेगी। फिर तो रोज शाम उस बागीचे में दोनों की मुलाकातें होने लगी। कच्चे पक्के आम के दौर चलने लगे और दोनों की सांसों में आम की खुशबू घुलने लगी। कुछ वक्त गुजरा और दोनों दिलों में मोहब्बत अपनी जगह बनाती चली गई। तो क्या ये सजा है हमारी चोरी की? घूंघट उठाए हुए ही असलम ने पूछा। रेहाना कुछ नहीं बोली। असलम ने उसके माथे पर बोसा दिया तो वो खुद में सिमटती चली गई और पूरे कमरे में आम की सौंधी खुशबू बिखरने लगी। धन्यवाद वसीम जी, बहुत खूबसूरत कहानी लिखी आपने।
थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा भी।
बहुत शुक्रिया आपका। अब सबसे पहले तो ये बताइए, ये कहानी लिखने का, इस तरह की कहानी लिखने का ख्याल आपको कैसे आया?
ख्याल बहुत बहुत बचकाना है और बहुत बचपन से जुड़ा हुआ है। दरअसल हम लोग बाग में जब आम तोड़ने जाते थे, 8-10 साल की उम्र रही होगी, तो तोड़कर तो लाते थे, खाते थे, वहां तक तो ठीक था। कभी कभार बहुत छोटी छोटी अमियां मिल जाती थी तो उसके जो गुठली होती है ना, वो बहुत कच्ची होती है, तो उस गुठली को अपने दोनों उंगलियों में, एक अंगूठे में और तर्जनी में, दोनों के बीच दबाकर उसको उछालते थे। तो उछालते थे तो वो जिस दिशा में वो जाता था, वो गुठली जाती थी, तो हम लोग कहते थे कि तुम्हारी शादी उधर ही होगी। तो वो ख्याल मेरे दिमाग में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि किसी की ऐसी शादी हुई नहीं कि जिधर गुठली जाए उधर ही शादी हो, लेकिन कहानी तो हो सकती है ना, कहानी हो सकती है। तो फिर मैंने कहा कि अभी मैं अपने 8-10 साल की उम्र के बीच की कहानी लिखूंगा तो शायद उतना मजा ना आए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा उम्र का तकाजा था और बढ़ा दिया, उम्र ही बढ़ा दी कि चलो भाई थोड़ा लंबा कर देते हैं। तो फिर शादी तक ले आए
और फिर आम को हमारे
सेंटर में
बिल्कुल हमारे जो टॉपिक था उसमें बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, सूट करती हुई आपने बिल्कुल कहानी लिखी, किस्साए आम, तो आम से ये किस्सा जुड़ा। अच्छा, और जुड़े से ये हमारे साथ जुड़े हैं स्पीकर पे प्रज्ञा जी और सुशील जी। तो
जी
सुशील जी,
प्रज्ञा जी से हम चाहेंगे कि वो कुछ कहें और
कहानी के बारे में,
या सुशील सर से भी कहेंगे
कुछ। कहिए प्रज्ञा जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो।
जी, मैंने पूरी कहानी सुनी, बहुत सुंदर वाचन, बहुत सुंदर लेखन, और आम के मौसम और आम की महक जो है वो ऐसे घुली कि अपना बचपन याद आ गया, बगीचे याद आ गए। वसीम जी, आपने तो एकदम मुझे दरभंगा पहुंचा दिया, मेरे मणिकांत चाचा जी के बाड़े में, जहां हम झूला भी झूलते थे टायर का और बाल्टियों में भर के आम भी।
याद आ रहा,
बिल्कुल
इस प्रसंग को मैं बहुत आनंद आया। महक
टायर के झूले का आनंद ही अलग होता है मैम।
बहुत बहुत आनंद आ गया, बहुत मतलब खुशी से भरा माहौल हो गया है, मैं तो आनंदित हो गई हूँ, जा रही हूँ आम खाने।
बिल्कुल। सुशील जी से चाहेंगे कि वो भी दो शब्द कहें।
सुशील जी मोस्ट वेलकम।
मैं जस्ट लीड ज्वाइन किया लेकिन वसीम जी का आखिरी स्टेटमेंट सुना, लेकिन और प्रज्ञा जी ने बात कर ली तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग सुनूंगा, बट थोड़ा लेट हो गया, वर्क के कॉल में था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन के जरूर मंगवाऊंगा, लेकिन प्रज्ञा जी ने मेरे लिए बात किया है, और प्रज्ञा जी आम आम हमें भी दीजिए, बहुत मूड आ रहा है।
इसके लिए भी शुक्रिया, और आप बिल्कुल अभी आम खाएं, ठीक है। दरअसल वो क्या है ना कि इस वक्त जो है आम का मौसम है, और बहुत बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी को आम पसंद होता है। आम का वैज्ञानिक नाम आप सब जानते हैं, मैंगिफेरा इंडिका होता है, और इसके बहुत ये एक तरह से सेहत का खजाना होता है। तो हम लोग ऐसा ही टॉपिक चुनते हैं जो हमारी सेहत से भी रिलेटेड हो, हमारे समाज से रिलेटेड हो, और उससे हमें कुछ सीख मिले और कुछ इंटरटेनमेंट भी हो जाए, और कहानी तो हो ही उसमें। तो हम अपने श्रोताओं से यही आग्रह करते हैं कि जब वो कहानियां लिखें तो उसमें कहानी का जो टॉपिक है वो उसको बिल्कुल ना छेड़ें, वो उसका हीरो होना चाहिए। कहानी का हीरो, कहानी का किरदार वो टॉपिक होना चाहिए, या वो शीर्षक जो दिया गया है वो होना चाहिए, है कि नहीं दीपिका जी?
बिल्कुल बिल्कुल।
बट मेरे हमारे पास कहानियां आ तो रही हैं, बट टॉपिक से थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। हमारी कहानी का हीरो जो है, उनकी कहानियों का जो लिख रहा है लेखक, उनकी कहानियों का हीरो हमारा टॉपिक हो ही नहीं रहा है। अब आम को ही लीजिए, इसमें लोगों ने आम के बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, उन्हीं से मैंने जाना कि आम में कितनी खूबियां और खासियतें होती हैं उन कहानियों को पढ़कर। लेकिन फिर उसमें मुझे किरदार नजर नहीं आया जो कहानी के लिए किरदार होना चाहिए। अब जैसे मेरी कहानी में मैंने एक किरदार गढ़ा, आम को सेंटर में रखा, कि आम से कैसे दो लोगों की जिंदगी एक मोहब्बत की तरफ जा सकती है, मायल हो सकती है, उन दोनों में शादी हो सकती है, और क्यों ना ऐसा करें कि हम सुहागरात की जगह में, उस वक्त में दूध की जगह हम आम को शामिल कर दें। तो ये कहानी हो गई। कहानी तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना, वो तो हमारे दिमाग की उपज होती है। इसलिए हम बार बार अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो कहानी सोचें, कुछ भी सोचें, लिखें, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है उसको दरकिनार ना करें, उसको हमारे किरदार को ना मारें, कहानी का जो टॉपिक दिया गया है उसको अवॉइड ना करें।
बिल्कुल वसीम जी, अब आप हमें ये कहानी, अब जो हम टॉपिक देंगे हमें ये सोमवार तक आप भेज दीजिएगा, कहानी बुनो @gmail.com पे 500 से 700 शब्दों में।
तो अब अगले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दीपिका जी। अब अगला टॉपिक मैं चाहूंगा कि आप आज बताएं, और हमारे श्रोताओं को के लिए कुछ आसानियां भी पैदा करें, और ये भी बताएं कि कितना मुमकिन हो सकता है कि वो कहानी टॉपिक को ना छोड़ें और बेहतरीन कहानी लिखें।
अब की जो टॉपिक मैं देना चाहती हूँ, मुझे लगता है शायद हर कोई लिख सकता होगा इस पे, और मैं टॉपिक भी चाहूंगी हमारे लिसनर ही गेस करें। तो टॉपिक होगा, उसके लिए मैंने छोटी सी कविता तैयार की है जिससे आप गेस करके बताइए कि टॉपिक होगा क्या। तेरी सांवरी सी सूरत कुछ यूं भाती है, सुबह हो या रात तेरी तलब लग ही जाती है, सर्दी में भी गर्मी का तू एहसास दिलाती है, होठों से लगा लूं तो तू मेरी प्यास बुझाती है।
क्या बात,
गर्मी में भी तू मुझे खूब भाती है, बावरा सा फिरता हूं जो तू मुझे मिल ना पाती है। बताओ कौन है ये? लिसनर्स फटाफट टाइप करिए और मुझे बताइए ये कौन है।
सांवरी सी सूरत से तो मुझे कॉफी लग रही है।
कॉफी डार्क भी होती है। ओहो अच्छा। ये मेरा फेवरेट नाम किसने लिया? सुनील जी। बिल्कुल गोविंद जी, बिल्कुल सही। चाय और बिल्कुल चाय, और इसका
चाय तो मेरा भी फेवरेट है।
आखिरी लाइन है, जब बोला गया बावरा सा फिरता हूँ जो तू मुझे मिल ना पाती है, तब है चाय तू मुझे खूब याद आती है, चाय रे चाय तू मुझे खूब याद आती है।
इसका मतलब तो, आपके कहने का मतलब कि चाय रे चाय, यही आपका
चाय
टॉपिक
रे
है।
चाय, बिल्कुल इस बार का टॉपिक है चाय रे चाय, और चाय पर कुछ भी लिखिए, चाय इश्के चाय, मोहब्बत चाय, आशिकी चाय की आशिकी, कुछ भी लिखिए आप कहानियां, और हम चाहेंगे बहुत सारी कहानियां, क्योंकि चाय तो वसीम जी सभी पीते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, चाय पर तो अनगिनत कहानियां हैं। मतलब आप ये देखिए कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ और मैं ऐसे ऐसे ऑफिसेज में काम किया हूँ जहां पर अगर दिन में 8-10 चाय ना पिए आदमी तो फिर वो काम ना कर पाए। इस तरह की तलब लगती है चाय पीने की।
और
और
चाय
दिल्ली में
कितनी
तो
कुर्बानी देती है वसीम जी, खुद को
हाँ
चलाकर
बिल्कुल
लोगों को मिलाती है, ये देखिए।
हाँ, तो ये
आए
भी एक कहानी है कि वो चाय किस तरीके से पकती है। चाय को पकते हुए देखना अपने आप में बड़ा रोमांटिक सा फील होता है कि वाह, उसका कलर बदलता है, उसका उसका फ्लेवर बदलता है, खुशबू धीरे 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 मैच्योर होती है। तो ये हर तरीके से देखें तो इसमें कहानियां बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं लिखने के लिए। तो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, वो हमें उम्मीद है कि वो कहानियां इस पर लिखेंगे। और सबसे बड़ी चीज की कहानियां लिखने के लिए अपनी जिंदगी से जुड़ी चीज ज्यादा लिखें। जैसे मैंने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी लिखी आम पे, किस्सा है आम, तो इसी तरीके की कहानियां लिखें। और जिंदगी से जुड़ी कहानियां ज्यादा वो होती हैं, मोटिवेट करती हैं और ज्यादा फैंटेसाइज भी करती हैं, और ये भी कि वो ज्यादा पसंद भी आती हैं और हमारे आपके बीच की होती हैं, तो इसलिए लगता है कि अच्छा ये तो मेरी ही कहानी है, मैं भी तो चाय पीता हूँ या मैं भी तो चाय पीती हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकती या क्यों नहीं लिख सकता। तो लिखिए, है ना
बिल्कुल
दीपिका जी?
बिल्कुल। और चाय पर आप चाय को चाय मत समझिए। अगर आपको कहानी लिखनी है, अगर उससे जोड़ कर लिखना है, आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि आप बैठे हैं, चाय की सौंधी खुशबू, अदरक घुल रही है उसमें, इलायची की सौंधी खुशबू आपको आ रही है और आप किसी और दुनिया में खोए जा रहे हैं, और वो चाय जब आपके सामने पेश होती है, उफ, चाहे गर्मी हो या
आहा।
सर्दी, ओहो, अब तो बनाने पड़ेंगे चाय।
तो प्रज्ञा जी आप आम खाने जाइए, मैं चला चाय बनाने।
ऐसा लग रहा है कि चाय का रोटेशन हो रहा
चाय पियो कि आम, चाय बनाओ कि आम खाओ।
ना पहले
है। अभी
आम खा
चाय
लेते हैं,
चाय
चाय भी
चाय
लीजिए।
की
देखिए, चाय प्रायोरिटी में आ गई, इसका मतलब कि कहानी आएंगी इस बार।
सजीव जी कह रहे हैं चाय के चक्कर में दीपिका के नंबर कट जाते हैं। वाकई यार, चाय सच बता रही हूँ, ये चाय के चक्कर में ना मेरे सीने पहेली के नंबर कट जाते
हमारा
हैं।
तो चाय के
हाँ,
चक्कर में
चाय
शादी
उबल
हो
रही
गई।
है। यहाँ नंबर कट रहे हैं।
चाय से जुड़े
और
किस्से लिखिए और श्रोताओं हम सबको जो है मतलब हमारा मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com, KAHANIBUNO@gmail.com। सोमवार तक कहानी भेज दें तो हमारे लिए सहूलत होगी कि उसको एडिट करने में, उसको पढ़ने में और आपको रिप्लाई देने में भी। और ज्यादा से ज्यादा 500 से 700 शब्द के बीच की कहानियां हों तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे बड़ी कहानी होगी तो एडिट करने भी मुश्किल आएगी और फिर वो पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा और टाइम टेकिंग भी हो जाएगी हमारे लिए, है कि नहीं दीपिका
जी
जी?
बिल्कुल बिल्कुल।
तो
और बस कहानियों को खूबसूरती से लिखिए, जो दिल करे वो लिखिए, बाकी एडिट हम वसीम जी और हम करते ही हैं, उसमें आप फिक्र मत कीजिए कि ये सेंटेंस आपका ठीक नहीं आ रहा या शब्द ठीक नहीं है, बट आप अपने
बिल्कुल बिल्कुल,
इमोशंस
उसके लिए तो
अपने
हम
जो
बैठे
तरीका
हैं,
वो
उसके लिए तो
लिखिए।
हम बैठे हैं। हम अच्छी तरह कहानियों को परिष्कृत कर देंगे, बना देंगे, मेच्योर कर देंगे, बस कुछ भी, बस ये हो कि वो कहानी टॉपिक से बाहर ना जाए। टॉपिक जरूर हो, उसी उसी टॉपिक पर आप कहानी लिखें। जैसे चाय री चाय, अब चाय री चाय एक तरह से चाय जैसे सिगरेट की तलब लगती है, जैसे शराब की तलब लगती है, ये खैर ये तो बुरी बातें हैं, बट चाय की तलब बहुत अच्छी तलब मानी जाती है। मैं ये देखता हूँ कि चाय पीकर काम करने वाले या ऑफिसेज में काम करने वाले चाय पीकर बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, और साइंटिफिक रीजन भी है कि चाय कॉफी आदमी को एक्टिव रखता है ना, पीने से।
बिल्कुल,
तो
चाय के नुकसान
मतलब
कहानी लिख
साइंटिफिक तो
सकते
नहीं
हैं, घर
बताते
की
हैं।
कहानी लिख
हाँ,
सकते
लिखना
हैं,
नहीं कहा,
तो हमको तो ब्रेक मिलता है।
मैंने चाय तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वाकई टी ब्रेक काफी जरूरी होता है, थोड़ा सा हमको और प्रोडक्टिव कर देता है थोड़ा सा ब्रेक लेना।
जी 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 बिल्कुल
और चाय कितने रिश्ते बनाती है वसीम जी, कहीं आप जाते हैं होता है ना कि आज वो
श्री
देख
शर्मा
लिया।
जी सही कह रहे हैं, बैड हैबिट्स में,
हाँ,
बैड
बैड
हैबिट
हैबिट रख भी
ज्यादा
लिख सकते हैं
टी,
आप, कोई
ज्यादा
फर्क नहीं
देखिए,
पड़ता।
अति अति की भली ना
अति
बरसना, अति की भली ना धूप, तो
जी,
अति किसी चीज की भली नहीं है, तो
तो अब
इसलिए
वक्त हो
लिमिट में
चला है
पीजिए,
और
मना
मुश्किल
नहीं
से
है।
30 सेकेंड बचे हुए हैं दीपिका जी, तो
जी
हम सबको नमस्कार कर लें और सबसे इजाजत ले लें और सब लोग खुश रहें। और
बस
गर्मी
हम, हाँ,
गर्मी बहुत
और
परेशान
चाय
कर
पे
रही है,
कहानी
तो
लिख के भेजिए हमें,
हाँ चाय पे
और
कहानी लिख
कुछ
के भेजें,
रिश्ते जुड़े
आम
हों
खाएं।
आपके अगर चाय की वजह से तो वो भी आपकी कहानी हो सकती है।
आज की शाम
बिल्कुल
चाय और आम के
ओहो वेरी गुड सुशील जी, बहुत अब हम चले चाय बनाने और आप सबको जो आम खाना है आम खाइए, चाय पीना है चाय पीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया लिसनर्स का,
सबको चाय भरा नमस्कार।
नमस्कार।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.